काली शक्तियों का मालिक कोई और नहीं बल्कि अमित था। उसका भी तारापरी के सामने खुल चुका था, और जिस होटल के कमरे में वो तारापरी के साथ था, असल में वो तारापरी नहीं थी, वो तो उस छोटी सी जलपरी को बनाई हुई फोटोकॉपी थी। जैसे ही अमित ने उसे छूने की कोशिश की थी, तभी वो फूलों के ढेर में बदल चुकी थी। और उस SMS के मिलने पर अमन उस होटल में पहुंच चुका था, और वहां अमित को देखकर हैरान रह गया था, और वो अमित को उल्टी सीधी सुनाकर अपने घर के लिए निकल चुका था। अमित जो कि काली शक्तियों का मालिक था, उसका पारा हाई हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमन उसे ऐसी हालत में इस जगह पर देखेगा। अमन को लग रहा था वो मैसेज भेजकर अमित ने ही उसके साथ खटिया मजाक किया था। वहीं दूसरी ओर तारापरी के अंदर उसकी रूह वापस आ चुकी थी, और करिश्मा जी उसे सगाई के लिए तैयार करने लगी थीं। वहीं अमित का अब गुस्से में मारे बुरा हाल था, और उसने अपने बंगले पर पहुंचकर जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था उसके सामने नकली तारापरी को लाकर मलिका ने छल किया था। सो वो मलिका को सजा देने के लिए उसने उसकी काली रूह जो उसने उसके जिस्म में डाली थी उसे बुला लिया था, और चूंकि मलिका का जिस्म उस रूह का मोहताज था तो वो भी वहां खींची चली आई थी। मलिका को इस तरह फोर्सफुली बुलाने से उसके जिस्म को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, और कुछ ही देर हुई थी कि मलिका उसके मंत्र के बंधन से ना चाहते हुए भी खींची चली आई थी। तब अमित ने गुस्से से उसे अपने उसी कमरे में ले गया जहां कल रात उसने उसके साथ बिताई थी। उस कमरे में ले जाकर उसने उसके जिस्म को कपड़ों से अलग कर दिया और गुस्से से फुंकारता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा था। तब मलिका ने रोनी सूरत में कहा था, मालिक मेरी क्या गलती है, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं। तब वो मालिक गुस्से से उसे बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, तू मेरे सामने नकली तारा को लाकर मुझे अमन की नजरों में ले आई। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने काली शक्तियों के मालिक को धोखा देना चाहा। मैं तेरे इस धोखे की मैं आज तुझे सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। तुझे क्या लगा तू मुझे उस जिन के सामने ले आएगी और वो जिन मुझे मार डालेगा, तो तू आराम से उसके साथ जिंदगी गुजार सकेगी और हमेशा हमेशा के लिए तुझे मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और तू रहम की भीख मांगेगी मुझसे, लेकिन नहीं, अब कोई रहम नहीं किया जाएगा तुझ पर, समझी तू। और हाँ, बहुत गुमान है ना तुझे अपनी इस खूबसूरत काया पर, तो देख तू अपना असली रूप। क्या वाकई तेरा ये जिस्म खूबसूरत है? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जिस्म मैंने तुझे दिया है, जब तक मैं चाहूँ तब तक ही तेरा जिस्म खूबसूरत रह सकता है, समझी तू। अब देख तू अपना असली चेहरा। ऐसा कहकर अमित जो कि काली शक्तियों का मालिक था, उसने कुछ पढ़कर मलिका पर फूंकना शुरू कर दिया था। मलिका रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन अमित को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मलिका अपने आप में सिमटी हुई सी खड़ी रही थी, और देखते ही देखते कहीं से एक रूह वहां पहुंची थी जो कि मलिका की असली रूह थी, जो उस काली शक्तियों के मालिक अमित के कब्जे में थी। तभी अमित ने कुछ और पढ़कर मलिका पर फूंकना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते मलिका के अंदर से आत्मा निकलकर बाहर आ गई थी, और उसकी असली आत्मा अमित के इशारे पर उसके अंदर चली गई थी। मलिका पहली काली रूह के निकलते ही बेजान हो चुकी थी, लेकिन तभी अमित ने उसके अंदर उसकी असली रूह डाल दी थी। और उसके अंदर रूह डालने के बाद अमित ने कहा था, अमित ने उसे कहा, वो देख उस आईने में अपने आप को, वो है तेरा असली रूप, ये है तेरा असली चेहरा, कर अब इस चेहरे पर घुमान और इतराई इस जिस्म पर। ऐसा कहकर अमित एक शैतानी हंसी हंसने लगा था। अमित ने जैसे ही शीशा मलिका के सामने किया, अपने आप को देखकर उसकी बड़ी ही भयानक चीख निकल पड़ी थी, और वो बेबसी से अपने निढाल और बदसूरत जिस्म को देखने लगी थी। मलिका की असली रूह उसके अंदर आते ही उसका पुराना जिस्म लौट आया था, जिस जिस्म पर उसकी इज्जत लुटने के निशान थे। अपने सारे निशान देखकर उसके घाव ताज़ा हो गए थे। उसकी उम्र 50 साल की हो चुकी थी, और उसका गोरा रंग एकदम फीका पड़कर काला स्याह हो गया था। उसकी चेस्ट जो बेपनाह खूबसूरत थी, वो अब एकदम सुखड़ी हुई सी हो गई थी। उसके चेहरे और हाथ पैरों पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। मलिका जहाँ पहले एक खूबसूरत जवान लड़की थी जो किसी के भी होश उड़ाने का दम रखती थी, वो अब एक 50 साल से ज्यादा उम्र की कुरकुरी बुढ़िया लग रही थी। मलिका अपने उस जिस्म को देखकर कांप उठी थी। उसका मन खुद को देखकर घृणा से भर गया था। मलिका खुद को इस हालात में देखकर रोने लगी थी, और उसने ना आव देखा ना ताव, वो अमित के पैरों में गिर पड़ी थी और माफी मांगने लगी, और बोली, मैंने तारा को नहीं बदला था, मैं नहीं जानती वो कैसे बदली, मैंने सिर्फ एक गलती की थी, मैंने अमन को जल्दी वहां आने का मैसेज भेज दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो मालिक, और मुझे ठीक कर दो, और आप तो महाशक्तिशाली हैं, आप खुद इस बात का पता लगा सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। तब उसकी बात सुनकर अमित ने सोचा, ये सही कह रही है, मुझे एक बार अपने सिरे से सच का पता लगाना चाहिए, और भला मेरी शक्तियों का अंदाजा इसे अच्छे से है तो ये मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये सोचकर अमित ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और वापस मलिका के ऊपर फूंक दिया। फूंक मारते ही एक बार फिर मलिका के अंदर उस काले साए की रूह चली गई जिसके पास असीमित शक्तियां थी।
अमित ने ऐसा इसलिए किया था कि अगर मलिका ने उसे धोखा दिया होगा तो उसके अंदर काले साई की आत्मा डालनी होगी, क्योंकि मलिका ने झूठ बोला था या सच उसने काली रूह के साथ ही बोला था। और एक बार फिर से काली रूह के आ जाने पर मलिका बदल चुकी थी, और एक बार फिर से मलिका खूबसूरत औरत बन गई थी। उसका झुर्रियों से भरा हुआ शरीर एकदम बदल चुका था, जहां उसका लटकता पेट फिर से अंदर चला गया था, और उसकी सुकड़ी हुई चेस्ट एक बार फिर से फूली फूली और मोटी मोटी हो गई थी। तब मलिका ने एक बार फिर अमित के पैर पकड़ लिए थे और उससे मांगी मांगने लगी थी। तब अमित, ज्यादा खुश मत हो, तूने मुझे धोखा दिया है या नहीं ये मैं तेरे जिस्म से ही पता लगा लूंगा। ये सुनकर मलिका हैरान रह गई और अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे घूरने लगी थी। तब अमित, जो कि काली शक्तियों के बादशाह था, उसने उसे कहा था, हैरान क्यों होती है, तूने ही तो कहा था कि मैं काली शक्तियों का मालिक हूँ, मेरे लिए सच का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अब देख किस तरह से मैं तेरे इस जिस्म से सच का पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर मैं
वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी ने तारा परी को तैयार करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से कुछ लड़कियां बुला ली थीं, जिन्होंने कुछ ही पलों में तारा परी को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया था। इतना खूबसूरत कि अगर कोई आम आदमी उसे देख ले तो उसी वक्त अपने होश गंवा बैठे। वो खूबसूरत सा गाउन पहनकर तारा परी एक शहजादी लग रही थी। वहीं परीलोक से उसकी माँ यानी कि रानी माँ एक बड़े से पानी के मर्तबान में अपनी बेटी यानी कि तारा परी को देख रही थी। उनका जब भी अपनी बेटी को देखने का मन करता था वो उसे देखने लगती थी, और आज अपनी बेटी को सगाई के जोड़े में देखकर रानी माँ की आंख भर आई थी। तभी सोनल परी, जो कि अब परीलोक में थी, उसने रानी माँ से आकर कहा कि रानी माँ, उस राक्षस को पत्थर मारने का समय हो गया है, आप आइए हमारी साथ। उस राक्षस का नाम सुनते ही रानी माँ का मूड खराब हो चुका था, और जहाँ वो अपनी बेटी को याद करके प्यार बरसा रही थी, अब वहाँ नफरत और गुस्सा भर चुका था जो उस राक्षस की वजह से आया था। और वो उठी और वो उस पानी के बड़े से मर्तबान को बंद करके सोनल परी के पीछे चल पड़ी थी। परीलोक के कुल देवता ने तारा परी के पृथ्वीलोक जाने के बाद रानी माँ को एक काम दिया था कि जिस कमरे में वो राक्षस मूर्छित है वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि तारा परी का ही था। उस कमरे में जाकर रानी माँ को हर रोज कुछ विशेष काले पत्थर उस राक्षस को मारने होंगे, और ये जब तक करना होगा तब तक तारा परी पृथ्वी लोक से परीलोक वापस नहीं आ जाती, क्योंकि अगर एक भी दिन वो पत्थर मारना भूल गई तब पृथ्वी लोक में तारा परी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो रानी माँ बिना नागा किए हर रोज उस राक्षस को पत्थर मारने जाती थी, वो भी एक तय किए समय पर। 3 काले पत्थर हर रोज उसे मारने होते थे। वहीं दूसरी ओर तारा परी पूरी तरह से सगाई के लिए तैयार थी, और करिश्मा जी अपनी उन जादुई लड़कियों के साथ उसे लेके बाहर आने लगी थी, जहां पहले से ही मान और अमन उसका इंतजार कर रहे थे। तारा परी को आज हल्की हल्की सी शर्म महसूस हो रही थी, और साथ ही उसकी आंखों में एक नमी सी थी, क्योंकि सही मायनों में आज उसकी सगाई होने का रही थी, लेकिन उसकी अपनी माँ ही उस सगाई में उसके पास नहीं थी। वो मन ही मन अपनी माँ को याद करने लगी थी। आज कितने दिनों के बाद उसे अपनी माँ की इतनी याद आई थी। वही उस राक्षस के पत्थर मारते समय रानी माँ को एहसास हो गया था कि उनकी बेटी उसे अपने दिल से याद कर रही थी। 2 पत्थर तो उन्होंने उस राक्षस को मार दिए थे, लेकिन 3रे पत्थर के वक्त तारा परी की याद उनके दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए वो 3रा पत्थर मारे दिना ही तारा परी से मिलने के लिए चली गई थी।